दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात है। आकाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि बेशक तुम में से बरोज़े कयामत मेरे सबसे ज्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। कयामत के दिन कुर्ब मुस्तफ़ा चाहते हैं तो दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस अजीम हस्ती का हमने जिक्र करना है, हम सबको उनसे बड़ा प्यार है और एक ऐसी अजीम हस्ती है कि एक ही शख्सियत में अल्लाह पाक ने इतने सारे कमालात अता फरमाए। नॉर्मली हम किसी एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो उसकी कोई एक स्पेशलिटी होती है, कोई दो होती हैं, तीन चार उसकी खूबियाँ होती हैं, मगर बरेली के ताजदार इमाम इश्को मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में जितना पढ़ते हैं जितना जानते हैं अकल हैरान हो जाती है। एक तरफ तो आप तकवा और परहेजगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, इबादत में आपका मकाम बहुत बुलंद है, सुन्नतों पर अमल सुभान अल्लाह, लेकिन जब आपकी इल्म की बात करते हैं आपकी नॉलेज की बात करते हैं तो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम बड़े बड़े उलमा हैरान हो जाते हैं कि किसी एक शख्सियत में इतने सारे उलूम कैसे जमा हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको आज की जबान में समझाऊं तो कोई शख्स एक या दो तीन चीजों पर पीएचडी कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है, मगर आला हजरत के बारे में आता है कि 100 से ज़ायद उलूम पर 100 से ज़ायद ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर आप मास्टर्स का दर्जा नहीं रखते थे बल्कि अथॉरिटी का दर्जा रखते थे। आला हजरत वो शख्सियत है कि जिन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, और आला हजरत की सिर्फ जात पर नहीं, आपकी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, यानी आला हजरत की फहमे कुरान पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के तर्जमाए कुरान पर पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के इल्मे हदीस पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत के फतावा रजविया पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत की शायरी पर पीएचडी हो रही है, यानी आप सोचें कि वो खुद शख्सियत कितनी बड़ी होगी कि जिसकी जिंदगी के किसी एक पहलू पर लोग पढ़ रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं और पीएचडी हासिल कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि एक मदरसे में रहने वाली शख्सियत जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर नहीं गए हैं मगर ऐसे ऐसे उलूम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए, ये खास ऐसा इल्मे लदुन्नी का फैजान था कि जिस सिमत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं, कलम उठाते थे तो इल्म के दरिया बहा देते हैं। तो आज हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की उस अजीम फकाहत और जहानत और फतावा पर तो बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। मैं कुछ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की आदतें और भी इस नीयत से बयान करूंगा कि जब अल्लाह ने एक अल्लाह अपने वली को इतना बड़ा मकाम दिया और उनकी ऐसी क्या आदतें थी जिनमें से कुछ हम अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कुरान पाक से बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा, अल्लाह पाक जब किसी शख्सियत से बहुत बड़ा काम लेना चाहता है ना तो उसे अपने कर्म से चुन लेता है और फिर उनको गलतियों से भी बचाता है। 4 साल की उम्र में आला हजरत ने पूरा कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया था। एक बार कारी साहब आपको पढ़ाने आए, कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, तो कारी साहब मिसाल के तौर पर पढ़ाते थे जबर, आला हजरत की जबान से निकलता था जेर, दोबारा पढ़ाया एक लफ्ज उसमें जबर था, आला हजरत की जबान से जेर ही निकलता रहा। आपके वालिद साहब करीब बैठे थे, आप जानते थे कि आला हजरत एक बार कोई बात समझाई जाए ना उसको हमेशा रिपीट ठीक ही करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि अहमद रजा ऐसी गलती बार बार करे। जब काफी देर तक ये देखते रहे कि कारी साहब जो पढ़ाते थे आला हजरत उसके उसके मुकाबले कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि कारी साहब ऐसा करें कि कुरान पाक के इस नुस्खे की जगह कोई और नुस्खा मंगवाए। कदीम नुस्खा मंगवाया गया और जब जग निकाल कर उसको चेक किया गया तो वहां वही एराब लगे हुए थे, वही लफ्ज मौजूद था जो आला हजरत की जबान से निकल रहा था। यानी अल्लाह करीम ने बचपन ही से उनको गलती से महफूज रखा। याद रखिए औलिया किराम की बहुत सारी इकसाम, कुछ औलिया वो होते हैं जो पैदाइश से पहले चुन लिए जाते हैं, जिनको कहा जाता है मादरजाद वली है, पैदा होते ही अल्लाह के मेरी माँ के पेट में भी उनकी करामतों का जहूर हो जाता है। कुछ औलिया किराम वो होते हैं कि जिन्होंने जिंदगी किसी और अंदाज से गुजारी मगर जब गुनाहों से तौबा की अल्लाह करीम ने उन्हें विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। अच्छा, ये औलिया किराम का जो कैटेगरी है ना वो हमारे लिए बड़ी यूं समझिए कि मोटिवेट करती है कि ऐसा हो सकता है कि गुनाहगार आदमी भी اس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ کوئی ایسا نیک عمل کر لے, اللہ کی رضا حاصل کر لے, اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ڈاکو تھے مگر توبہ کی, اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. حضرت حبیب عجمی آپ سود خور تھے مگر بڑا طویل واقعہ ہے, آپ نے توبہ کی, اللہ نے اپنی ولایت عطا فرما دی. حضرت بشر حافی آپ شرابی تھے, آپ نے توبہ کی, اللہ نے آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ ایک بہت بڑے گروہ ولایت کے سردار مانے جاتے ہیں. مگر حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا پہلوان تھے, کشتیاں لڑتے تھے, مگر ایک سید زادے کی تعظیم میں لڑائی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں. اپنی ہار مانی آل رسول کے لیے اللہ نے ان کو ایسی جیت عطا فرما دی کہ ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ تمام باتیں ہم جیسے گناہگاروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے رہا کرو اور اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو, وہ بڑا کریم ہے. غوث پاک کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے تو چوری کرنے کو آیا تھا اور آپ نے ایسی نظر ڈالی کہ اسے ابدال بنا دیا, اسے کتب بنا دیا. تو ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. یہ واقعات جب نہیں پڑے تھے نا تو شاید یہ اشعار سمجھ نہ آتے. امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ سے ولی بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. اچھا ہم نارمل یہ دعا نہیں مانگتے مگر کیا حرج ہے, میرا رب چاہے تو بنا سکتا. میں قابل نہیں یہ مانتا ہوں مگر میرا رب چاہے. ولی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو. دوست جو ہے نا زبردستی نہیں بنتا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا, ولایت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہے کہ بھائی یہ کورس کر لو تو ولی بن جاؤ گے, اتنی نمازیں اتنے سجدے اتنے روزے تو ولی بن جاؤ گے. نہیں, آپ کا کوئی دوست آپ کی زبردستی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں, سارا زندگی ہمارے کام کرتے ہیں, دوست نہیں بنتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک بار ملاقات ہوتی ہے دل میں اتر جاتا ہے. نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والا دوست نہیں بنتا, دوسرے ملک میں رہنے والا دوست بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستی چیز کچھ اور ہے, وہ دل سے ہو جاتی ہے اور جس سے چاہے ہو جاتی ہے. اللہ بھی جسے چاہے جب چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما. لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہیں اولیاء کرام میں بھی جن کو فرام دا چائلڈ ہوڈ, کچھ کو تو پیدائش سے پہلے ہی اور کسی کو پیدا ہوتے ہی بچپن سے ہی ولایت عطا کر دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان خوش نصیبوں میں سے, He is chosen one, selected one. آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا. اور سبحان اللہ بچپن کے ہی واقعات بڑے نلالے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جہاں قرآن سے بڑا شغف تھا. اچھا قرآن کا ایک تو حافظ قرآن نہیں تھے مگر قرآن پڑھتے بہت تھے, تلاوت بہت کرتے تھے. تو ایک بار آپ کو خطوط آیا کرتے تھے تو کسی نے خط میں آپ کو حافظ صاحب لکھ دی. اچھا یہاں بھی سیکھنے والی بات ہے, ہمیں کوئی لکھ دے. اچھا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, ہم کہیں جائیں نا تو کوئی کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا آئیے گا. حالانکہ میں تو مفتی نہیں ہوں, علامہ صاحب آئیے گا. علامہ تو ایک بہت بڑے عالم دین کو کہتے ہیں, میں علامہ بھی نہیں ہوں. اچھا بعض اوقات ہمیں کوئی حافظ جی کہہ دیتا ہے لیکن نارملی لوگ جھوٹی تعریف پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. چلو یار کوئی بات نہیں, بڑا ہی اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا. نہیں, یہ شریعت کو محمود نہیں ہے. اگر آپ کی جو تعریف کی جا رہی ہے آپ نہیں ہیں تو اس پہ خوش نہ ہوں بلکہ بتا دیں میں وہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ جی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. تو اعلیٰ حضرت وہ سلیکٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ آپ نے پتہ ہے قرآن کیسے یاد کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا, اب عشاء کے وضو سے لے کر عشاء کی جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا, ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پارا یاد کر لیتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق اسی دن وہ پارا سنا بھی دیا کرتے تھے نماز کے اندر. 30 دن رمضان کے گزرے آپ حافظ قرآن بن چکے تھے. یہ فوٹوجینک میموری اعلیٰ حضرت کے پاس تھی کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ میں کسی بھی کتاب کو ایک بار پڑھ لوں اب اس کا جو ایک ایک ورڈ ہے وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بار ایک شخصیت بزرگ آیا آپ کے پاس, ان کے پاس ایک بڑی نایاب کتاب تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. ان کو کہیں سفر پہ جانا تھا. کہا حضرت کل تو میری روانگی ہے, اتنی موٹی کتاب تھی, کہا بس ایک رات کے لیے دے دیں. ایک رات کے بعد جب صبح ان کے جانے کا وقت آیا حضرت نے کتاب واپس دے دی. کہا حضرت ایک رات میں پڑھ لی پھر آپ کو کیسے یاد رہے گی؟ کہ اب اس کتاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ میرے ذہن میں محفوظ رہے گا. یعنی ایک بار, یعنی ہم کہتے ہیں سکیننگ مشین, آج کے دور میں کیا اسکین کرنا. علماء کرام جو آپ کے شاگرد تھے نا, وہ کہتے تھے بڑے بڑے مسائل جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے نا, میں مسئلہ نہیں ملتا تھا. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا, سرچنگ انجن آ گئے ہیں, ایک لفظ ڈالیں اپلیکیشن میں, وہ لفظ کون سی کتاب میں ہے وہ کمپیوٹر ڈھونڈ کے دے دیتا ہے, اپلیکیشن ڈھونڈ کے دے دیتی ہے. پہلے تو علماء ایک ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے 100 کتابیں کھولتے تھے, پڑھتے تھے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, پہلے فتویٰ پوچھنے جاتے تھے دار الافتاء تو 2-2 مہینے بعد جواب ملتا تھا کہ بھائی ہمیں پڑھنی پڑیں گی کتابیں. اب تو مفتی صاحب بھی ادھر بیٹھے بیٹھے سرچ مارتے ہیں تو فتویٰ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے سامنے, آسانی ہو گئی. مگر وہ بھی تو وقت تھا نا. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی کئی دن تک ایک حوالہ ڈھونڈتے, جب تھک جاتے نا تو ایک سرچ انجن تھا ہمارے پاس. ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے کہتے حضور یہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت پتہ یہ نہ کہتے تھے کہ فتاوی عالمگیری میں جا کے دیکھ لو, کہتے فتاوی عالمگیری جلد 3 صفحہ نمبر 12 صفحہ 70 نمبر 3 پر جا کر مسئلہ دیکھ لو. اور کہتے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہم وہ کتاب کھولتے, اسی صفحے پر اسی جگہ پر وہ مسئلہ لکھا ہوتا. ایک ایسی میموری اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت کو حافظے کی عطا فرمائی تھی. مگر سیکھنے کو مجھے اور آپ کو کیا ملا کہ جھوٹی تعریف پر خوش نہیں ہونا اور قرآن پاک سے محبت رکھنی ہے. اب کیا ہوا, اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی مشہور ہوئے, اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا, اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں, جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے, خود عظیم مفتی ہیں مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے, خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں. آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے, ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے, تمہیں پتا ہے میری کتنی مصروفیات ہیں, میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں, ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں آپ, بس ترجمہ قرآن دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا, میں ترجمہ فی البدیہ لکھوا دیا کروں گا. یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھئے گا, ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے. مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے, صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا, اعلیٰ حضرت مجھے فی البدی زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے, میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا, مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا. اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے. مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے, کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا, کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا. میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی, وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. شاعر کہتے ہیں نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں, ایسی پرسنالٹی ہیں, کمال دیکھیں. کچھ قرآن کی بات کی نا, اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی, آپ کیسے انسائیکلوپیڈیا تھے. ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہوا. سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا. دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں, ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے, وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا, اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا. مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے, اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا. اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی, شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے, کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ, تو یہ حدیث یاد ہوگی. تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی, ہاں یہ یاد رکھیے گا. تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا, हमारी शरीयत में हराम है। आला हजरत की खिदमत में सवाल हुआ, लोग कहते हैं प्यारे आका अली सलातो सलाम को दाफिउल बला यानी मुसीबत दूर करने वाला कहना शिर्क है। चलो ये बहुत सारे मसाइल का भी हल हो जाएगा, मुश्किल कुशा दाफिउल बला ये कहना शिर्क है। आला हजरत ने इसके जवाब में 300 हदीसों के जरिए साबित किया कि अल्लाह पाक की अता से मेरे आका अली सलातो सलाम दाफ़े रंजो बला। आला हज़रत की खिदमत पे सवाल हुआ, बाज लोग कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर तमाम नबियों से अफजल हैं तो कुरान और हदीस से दलील लाओ। आला हजरत ने ऐसा ईमान अफरोज जवाब लिखा कि 100 हदीसों से साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं। फरिश्तों की पैदाइश कैसे हुई इस पर कलाम करते हुए 24 अहादीस जिक्र की। हमारे आका अलैहिस्सलाम रोजे कयामत शफात फरमाएंगे इस मौजू पर आला हजरत ने 40 अहादीस जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत और अहमियत पर 56 अहादीस जिक्र की। वालिदैन के हुकूक के जब सवाल हुआ 91 हदीसों के जरिए जवाब दिया। सुभान अल्लाह, खत्मे नबूवत के बारे में प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आला हजरत ने 120 हदीसों के जरिए सवाल का जवाब अता फरमाया। यानी इस कदर नॉलेज, इस कदर हदीसें आला हजरत के सामने रहा करती। सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ हदीस पढ़ते पढ़ाते नहीं थे, हमारा यह भी बड़ा मसला है। कुरान में से बहुत सारों को पढ़ना आता है, हदीसें हम में से बहुत सारों ने पढ़ी हैं, हैं, बयान भी करते हैं, अमल कितना है। हाय हाय, नबी पाक के फरमान पर अमल कैसा था। खुद फरमाते कि एक बार तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बुखार से अभी उठा ही था, मक्के के दिन थे, मैं हरम पाक में मौजूद था और बारिश शुरू हुई। अब जब बारिश शुरू होने वाली थी, बादल आ गए थे, तो कहते मैं जल्दी जल्दी काबे के सामने पहुंचा। जैसे ही मैं काबे के सामने पहुंचा, बारिश होने लग गई, मुझे नबी पाक की वो हदीस याद आ गई कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। अभी हालांकि तबीयत ठीक ही हुई थी, बुखार से बाहर आए थे, कहते मैंने तवाफ शुरू कर दिया, फुल भीग गए, घर वापस आए तो फिर तबीयत जो है वो नासाज होने लगी। तो आपके किसी साथी ने कहा कि हुजूर, एक हदीस पर अमल करने के लिए आपने अपनी तबीयत का ख्याल ना किया, हालांकि इसी हदीस भी ज़ईफ है। एक बात याद रखिए, हदीस यानी नबी पाक का फरमान ज़ईफ नहीं होता, ये एक इस्तलाह है शरीयत की कि रावी जो होते हैं उस रावी के बारे में उसकी रिवायत करने में कुछ शराइत की कमी होती है, इसलिए उसको ज़ईफ कहा जाता है। कहा हुजूर, एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने के लिए अपनी तबीयत का आपने ख्याल नहीं रखा। आला हजरत ने जवाब क्या दिया, हदीस पर इत्मीनान, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा कैसा था। फरमाते हदीस ज़ईफ है मगर उम्मीद बड़ी कवी है, उम्मीद बड़ी पुख्ता है, मेरे नबी ने फरमाया है ना, अल्लाह वो अजर मुझे देगा कि जो बारिश में तवाफ करता है वो रहमत इलाही में नहाता है। आला हजरत को नबी पाक के फरमान पर यकीन कैसा था। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वजीफा करते हैं फायदा नहीं होता, तावीज लेते हैं मसला हल नहीं होता, दुआ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ना वजीफे पर इत्मीनान होता है हमें, ना तावीज पर यकीन होता है, ना दुआ पर भरोसा होता है। चलो यार कर लेता हूं, पता नहीं होगी कि नहीं, और नहीं होगी पहले से समझ लो, ये किताबों में लिखा है, दुआ के आदाब में लिखा है कि जो बंदा दुआ करते वक्त यकीन ना करे कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं अल्लाह देने वाला है देगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होनी। हमारी किसी दुआ में भी यकीन नहीं होता है, रूटीन वाली दुआ, रूटीन वाला वजीफा, रूटीन वाला अमल, कुछ भी नहीं होना। आला हजरत का यकीन देखो, हज पे जा रहे हैं, वालदा साथ हैं, समुंदर का सफीना है, तूफान आ गया, ऐसा तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान आया कि सारे काफले वालों ने कफन पहन लिए कि अब गए। वालदा भी बड़ी उम्र में थी, घबरा गई। आला हजरत ने कहा माँ जी आप ना टेंशन लें, कुछ भी नहीं होना, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारा जहाज नहीं डूबेगा। वालदा फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगी। आला हजरत ने कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं हमारा तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हम खैर से पहुंचेंगे। थोड़ी देर हुई तो तूफान खत्म हो गया, सबने कफन उतार दिए, नॉर्मल हो गए। वालदा ने कहा अहमद रजा, क्योंकि वालदा आला हजरत को जानती थी, ये सच के अलावा कोई बात नहीं करते, इतनी बड़ी बात कसम उठा ली। अहमद रजा ये तो बताओ तुमने अल्लाह की कसम कैसे खा ली, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहते हैं माँ जी मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है, आका ने फरमाया है जो किसी कश्ती में सवार हो, पानी के जहाज में सवार हो और पढ़ ले बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसका सफीना नहीं डूबेगा। माँ जी मैंने नबी की हदीस पर वो दुआ पढ़ ली थी, हमारे सफीने को कुछ भी नहीं होना था। आला हजरत के कहने वाले कहते हैं ये शेर जो है ना आला हजरत का, ये उसी सफीने में लिखा था जब तूफान आया था। वो क्या शेर था, आने दो याद बो दो, अब तो तुम्हारी जाने पे कश्ती तुम ही पे छोड़ी मेरे आका कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए
हैं। ये यकीन दुआएं कबूल होने लग जाएंगी, वजीफे काम करने लग जाएंगे जब अबे यकीन साथ हो। एक और मौके पर आला हजरत को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुंह से खून आने लगा और मुंह भी बंद हो गया। उस जमाने में आपके इलाके में ताऊन आ गया था। ताऊन बड़ी अजीब बीमारी है, उसमें गुठलियां हो जाती हैं, इंसान बाजों का दुनिया से चला जाता है। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने जब गुठलियां देखी, मुंह बंद हो गया, खून निकल रहा है, तो कहा कि इनको ताऊन हो गया है। और ताऊन बड़ा डेंजरस, आज के जमाने का कैंसर समझ लो आप। आला हजरत सर के इशारे से बात करते रहे क्योंकि उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, मगर इशारा यही था कि मुझे वो नहीं हुआ और थोड़ी देरों में ठीक हो गए। कब मैंने पहले ही कहा था ना मुझे ताऊन नहीं हुआ। कहा आप इतना यकीन से कैसे कहते, डॉक्टर कह रहा हो गया, सिम्टम्स बता रहे थे। कब मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है, जो किसी बीमारी में मुबतला शख्स को देख कर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम मुबतला का बही वफद्दलनी अला कथीरम मिम्मन खलक तफदीला। मैंने एक ताऊन के मरीज को देख कर ये दुआ पढ़ ली थी, मेरा यकीन था मुझे ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है। कैसा यकीन था है? तो ये बात समझ ले। मैंने क्या कहा, मैं आला हजरत की वो आदतें बयान करूंगा कि जो मैं और आप इंप्लीमेंट भी तो करें ना, हम भी दुआएं करते हैं, हम भी वजीफे पढ़ते हैं, मगर इत्मीनान यकीन नहीं, यकीन के साथ। बड़ा मशहूर वाक्य है ना कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, सब गांव वालों ने मिलकर कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। कई कई महीने गुजर गए, एक दो साल गुजर गए, बारिश का कतरा नहीं गिरा। सारे गांव वाले जमा हुए मैदान में, एक नौजवान छतरी लेकर आया। सारे गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि भाई एक कतरा बारिश का गिरा नहीं है, दरिया सूख गए, कुएं सूख गए, जानवर प्यासे, तू छतरी लेकर आया क्या? था मांगने किससे आया हूं? देने वाले से मांगने आया हूं, बारिश तो होनी है, क्या वापसी भीगता हुआ जाऊंगा? किताबों में लिखा जब दुआ हुई तो मौसलाधार बारिश हुई, सारा गांव भीगता हुआ वापस गया, नौजवान अपनी छतरी के साए में गया। फरमाए इसी नौजवान के यकीन से बारिश हुई। यकीन ही नहीं है तो दुआएं कर रहे हैं, काबे के सामने भी यूं यूं दिल हो रहा होता है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। अरे भाई अल्लाह के घर में नहीं होगा तो कहां से होगा? तो भरोसा तो करो ना, उदउनी अस्तजिब लकुम, उसने फरमाया मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो बस यही वो बात है जो हमें समझनी है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना सीख जाए। अच्छा, अब यकीन में बहुत सारी बातें आती हैं। हमें बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च करने में बड़ा दिल पर टेंशन शुरू हो जाती है, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। तो फिर तो टेंशन खत्म हो जानी चाहिए ना, जब भी खर्च करें एंजॉय के साथ करें, नहीं होगा कम, वादा है मेरे नबी का। जिसको नबी पाक के वादे पर यकीन नहीं हो सकता उसका कम हो जाता हो। आप यकीन तो लाओ ना यार, फिर आपकी नियत भी फतूर आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वादे फरमाए हैं, तो आप यकीन के साथ काम करते चले जाएं, फिर उसका नतीजा आप देखते चले जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हुकूकुल इबाद का कैसा ख्याल था? हुआ ये कि एक बार आपके पास जो है वो एक बच्चा जो था, आप एतिकाफ में थे, और एतिकाफ में एक बच्चा आपके लिए कुछ खाना वगैरह लेकर आता था, तो आपने वो बच्चा जो था वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब जब लेट हुआ तो आपने उसके सर पर एक चपत लगा दी कि मियां इतनी देर से क्यों आए? तो दो घंटे लेट आया था वो, आप बहुत थोड़ा ही खाना खाते थे, फिरनी वगैरह खाते थे, एक छोटा सा पान खा लेते थे। अब जो क्या हुआ कि जब बच्चा चला गया तो आपको ख्याल आया बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, घर वालों ने लेट खाना दिया होगा उसको, इसका क्या कसूर था जो मैंने इसके सर पर चपत लगा दिया? हालांकि इतने बड़े बुजुर्ग थे। अब शहरी के बाद उस बच्चे को फिर बुलाया, जो शाम को खाना वगैरह या पान वगैरह लाया था, तो बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा वो मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुम्हें सर पे चपत लगाई थी तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, अब ऐसा करो टोपी उतारी का तुम भी मेरे सर पे चपत लगाओ। सारे मस्जिद में लोग हैरान कि वक्त का इमाम छोटे से बच्चे से कह रहा है कि मेरे सर पे भी चपत लगाओ, यानी सर पे तुम मुझे मारो। बच्चा परेशान हो गया कि बाबा जी बुजुर्ग जी आप ये क्या कह रहे हैं? आला हजरत ने कहा कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। बच्चा कांपने लगा डर से, आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कई बार अपने सर पर चपत लगाई। अच्छा, उससे पहले पता है क्या किया, उसको थोड़े पैसे भी दिए, थोड़ी टॉफियां मंगा के दी कि ये ले लो अब मार लो, वो फिर भी नहीं माना। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सर पे चपत लगाई और उसके बाद आपको चैन आया कि कहीं ये बच्चा, क्योंकि अच्छा बच्चा कहता है मैंने आपको माफ किया, ये शरई मसला सुन लो। वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? फरमाया तुम ना बाले हो, तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये शरई मसला याद रखिएगा, ना बाले हमें तोहफा भी नहीं दे सकता, उसकी मिल्क तो होती है लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता, नाबालिग के हुकूक भी आप माफ नहीं करवा सकते। क्या यानी मिसाल के तौर पे किसी नाबालिग को आपने किसी तरह तंग किया, तकलीफ पहुंचाई, वो माफ भी नहीं कर सकता। मैं पीरों मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज बताऊं, एहतियात किसको कहते हैं, कैसा फैजाने आला हजरत है उन पर। अमीर अहले सुन्नत एक बार फरमाते हैं, मैं अपने बच्चों के बालिग होने का इंतजार करता रहा और जब मेरे बच्चे बालिग हुए तो सबसे पहले मैंने उनसे माफी मांगी कि तुम्हारी नाबालगी में अगर आज तक मैंने तुम्हारा कोई हक तलब किया तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, क्योंकि बच्चा नाबालगी में अपने हक भी माफ नहीं कर सकता। तो आप सोचिए, बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा अमल ना करें जिससे उसका दिल टूट जाया करे, लेकिन आला हजरत का हुकूकुल इबाद का ऐसा अंदाज था। सुभान अल्लाह, आला हजरत की बात करें और उनके इश्क रसूल की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत नबी पाक से इतना वालेहाना प्यार करते थे कि आपसे निस्बत रखने वाली हर चीज से भी कैसा प्यार था। आपने एक शेर लिखा, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ ये शेर नहीं लिखा, पढ़ता तो मैं भी हूं, आप भी हैं, आपने प्रैक्टिकली इसको साबित किया। आले रसूल का क्या अदब हुआ करता कि जब आपके पास कोई सैयद ज्यादा आता, आप किसी को चीजें तकसीम फरमाते, लंगर वगैरह बांटते, पता चलता ये सैयद है तो आप उसे दो अता फरमाया करते। हर ईद के दिन आला हजरत सबसे पहले किसी सैयद से मुलाकात होती, उसका हाथ चूमा करते। सुभान अल्लाह, एक बार अपनी तदरीस फरमा रहे हैं, स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आला हजरत खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद फिर बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो फिर खड़े हो गए, दो तीन बार ऐसा हुआ। लोगों ने समझा कोई तबीयत की खराबी है, तो हुजूर आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? कहा बराबर गली से एक बच्चा खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है, मुझे पता है ये बच्चा सैयद है, ये मेरे सामने आता है, मैं इसके अदब में खड़ा हो जाता। इतना इश्क रसूल और नबी पाक की आल से ऐसा प्यार, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि आज हमारे अतराफ में भी सैयद साहिबान होते हैं, आले रसूल होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए। अरे उनकी रगों में नबी पाक का खून है, बल्कि गरीब सैयदजादों की खिदमत करनी चाहिए। अब कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। अमीर अहले सुन्नत ने कई बार मदनी करों में ये फरमाया कि अपनी रोजी का कोई 1% फिक्स कर ले, अपने नफे का कोई परसेंटेज फिक्स करें कि वो पैसे सिर्फ साफ पैसे आले रसूल की खिदमत पे खर्च करें। अरे जिनके नाना का सदका हम खा रहे हैं, अगर उनकी आल की खिदमत आप कर देंगे, इनकी दुआएं लग गई तो नाना जान की शफात मिल जाएगी। तो आइए आज मैं और आप भी सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अमल को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सैयद साहिबान की खिदमत का हिस्सा रखा करें। और सच्ची बात यह है, इनकी खिदमत करके हम अपने भाग जगा रहे होते हैं, हम इन पर एहसान नहीं कर रहे, इनके नाना जान का सदका हमें मिल रहा है। तो बहरहाल आला हजरत का इश्क रसूल कैसा है, इस अच्छी बात यह है, कुछ शख्सियात का तारुफ होता है कि जनाब ये हिसाब में बड़ा मजबूत है, ये जनाब कैलकुलेशन में बड़ा मजबूत है, इसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, ये खूबसूरत बहुत है, इसका जहन बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है। मगर आला हजरत का तारुफ क्या है? इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत यानी नबी पाक का इश्क उनके अंदर ऐसा था कि जनाब आज भी आला हजरत को पढ़ें। सच्ची बात तो यह है कि आला हजरत मुझे और आपको सिखाते हैं कि सरकारे दो आलम से प्यार करना है तो कैसे करना है। बातें तो बहुत सारी हैं, अशार तो बहुत सारे हैं, अगर आला हजरत के इश्क को जांचना है तो आपकी शायरी को पढ़ें। आप बताते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम से इश्क कैसा था? जब कोई फनाफिर रसूल के मर्तबे पर होता है ना, तो उसको हर जगह अपना महबूब ही याद आता। अब मिसाल के तौर पे हम किसी बाग में जाएं, आजकल जाते हैं गर्मियों में लोग अच्छे इलाकों में, सब्ज इलाकों में, बड़ा अच्छा लगता है, फूल भी हैं, बाग भी हैं, हम कहते हैं जनाब बड़ा मजा आ रहा है, फूलों की खुशबूएं अच्छी हैं, हैं जनाब बड़ा ग्रीनरी है, तबीयत फ्रेश हो गई। मगर आला हजरत ने हो सकता है किसी बाग की सैर की, तो कलम उठा कर क्या लिखते हैं, उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। मैं और आप गुलाब सूंघे तो कहते बड़ी खुशबू है, मेरे रजा कहते खुशबू ऐसे ही नहीं आई, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। कहते जो आज भूनी भीनी खुशबू आ रही है ना, इसकी वजह यह है कि मदीने से हवा आई है जो इन फूलों को टच करके गुजरी है। सुभान अल्लाह, आज मैं और आप देखते हैं, जब भी चांद देखते हैं चांद की खूबसूरती में खो जाते हैं। चांद की दो सूरतें बड़ी खूबसूरत हैं, एक खूबसूरती है जब चांद पहली रात का हो, जिसको क्रिसेंट कहते हैं, हिलाल कहते हैं, और जनाब जब चांद पूरा हो तो उसे फुल मून कहते हैं, चौदहवीं रात का चांद कहते हैं। मगर मेरे रजा का तखय्युल देखें कि जब आप पहले दिन के चांद को देखें ना, तो वो कशकोल जैसा लगता है, वो प्याले जैसा लगता है। पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है ना, पूरे महीने की सैलरी मिलती है। आला हजरत कहते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, ऐ चांद आजा जल्दी मदीने और आका से पूरे महीने की भीख ले जा, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में पटता है महीना नूर का, जल्दी आकर पूरे महीने की खैरात ले जा। अच्छा, इसी चांद को अगर उल्टा कर दें, यूं तो कशकोल है ना, अगर इसको यूं कर दें तो फिर क्या बनता है? अब तखय्युल रजा देखें। आला हजरत कहते हैं चांद को अगर यूं देखें ना, तो ये तो नाखून का कोई इशारा लग रहा है, ये तो नाखून के शेप में बन जाता है। तो आला हजरत कहते हैं ऐ बूढ़े आसमान, तेरे पास चांद है इतना फूल रहा है, पहली रात का चांद है अपने ऊपर इतना फूल रहा है, इतना मत फूल, मेरा दिल भी मेरे आका के मुबारक पैरों के नाखून का शहदाई है। अगर इमेजिनेशन समझने वाला कोई हो ना, तो दीवाना हो जाएगा आला हजरत का। ये नहीं कहा कि मेरे पास प्यारे आका के कदमों के नाखून हैं, नाखून नहीं है, मेरा दिल उस नाखून का शहदाई है, तू किस बात पे फूल रहा है? सुनो शेर क्या लिखते हैं, फरमाते हैं दिल अपना भी शहदाई है उस नाखून पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखून पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल, ऐ बूढ़े आसमान मत फूल पहले दिन के चांद पर, मेरा दिल भी नबी पाक के पांव के नाखून का शहदाई है। अब पूरे दिन का चांद, पूरे 14 तारीख का जो चांद होता है, कितना प्यारा, बड़े बड़े शायरों ने 14वीं के चांद को अपने महबूब से मिलाया, मिसालें दी कि मेरे महबूब का चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। आला हजरत का तखय्युल देखें, कहते हैं ऐ चांद लग तो बड़ा खूबसूरत रहा है, मगर आपने देखा होगा 14वीं के चांद पर दाग नजर आता है, थोड़ा सा डिफेक्ट नजर आता है, अगर वो दाग भी ना होता तो और खूबसूरत होता। तो आला हजरत कहते हैं चांद तुझसे हो गई गलती, गलती ये हो गई कि तेरे पास ही तो गुजरे थे प्यारे आका मेराज की रात, हैं आसमानों की सैर पे गए थे ना नबी पाक, आसमानों पर गए, तेरे करीब से ही तो गुजरे थे। आका के कदमों से लगने वाली खाक उठा लेता, चेहरे पे मल लेता, तेरे दाग धुल जाने थे। क्या लिखते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक उनके रह गुजर की, सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया के मल मले मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। अच्छा, अब मैं और आप जब कभी गांव में जाएं, वैसे मदनी काफिलों में जाया करो तो गांव में भी जाने को मिलता है, अब तो शहर वालों ने तारे देखे ही नहीं है, ये बच्चों ने तो पता नहीं कितना टाइम हो गया स्टार्स नहीं देखे होंगे, लाइटों में नजर नहीं आते। मगर आप किसी इंटीरियर में जाएं तो तारे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे नजर आते हैं, हम देखे तो कहते हैं देखो देखो चांद आसमान पर कितने तारे नजर आ रहे हैं, मगर जो नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो ना, है उसे वहां भी आका की याद सताती, कहते पता ये तारे क्यों चमक रहे हैं, ये तारे क्यों दमक रहे हैं? कहते जब नबी पाक मेराज की रात दूल्हा बने थे ना और गुसल किया था, तो आका के जिस्म से जो कतरे टपके थे वो तारों ने संभाल कर रख लिए थे।
वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए।
सबसे अल्लाह की बड़ी नेमत, सबसे खूबसूरत नेमत कौन सी है? जन्नत। जन्नत कैसी होगी और उसका रंगो रोगन कैसा होगा? मेरे रजा से पूछो, इश्क देखो, जन्नत के बारे में ख्याल भी आया तो क्या ख्याल आया? कहते मैं बताता हूं, जन्नत का जो रंगो रोगन है ना, वो पता है क्या था? मेरे आका अली सलाम के जब तलवे धोए गए थे ना मेराज की रात, जिस्म नहीं तलवों का जो धोवन बचा था ना, उसी को अल्लाह के करम से जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया।
बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत जन्नत का रंग रोगन जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के। ये है इश्क का लेवल है। मदीने से प्यार कैसा? अरे मदीने से तो बात बाद में करेंगे, मदीने के कुत्तों से कैसा प्यार है। कहते हैं रजा मदीने गए थे, मदीने के कुत्तों की खिदमत की कि नहीं की? अच्छा कुत्ते नॉर्मली जो सग होते हैं गोश्त पसंद करते हैं ना। कहते हैं ए रजा मदीने के तेरे नबी के शहर के कुत्ते थे, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट के देता ना, गोश्त खिलाना था तो दिल का पार्ट ऑफ द हार्ट खिलाता, क्या हो जाना था? जान चली जाती, कोई बात नहीं। आका के घर के कुत्तों की खिदमत करनी चाहिए थी। लेवल ऑफ इश्क देखें। कहते हैं पार आए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। फिर आला हजरत हमें ये भी बताते हैं, देखो यकीनन सरकार अली सलाम की रहमत पर मांग तो करना है, मचलना तो है, मगर रोना भी है, अपने गुना भी याद रखने हैं, शर्मिंदा भी होना है। क्या अर्ज करते हैं उफ बे हयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खू दर गुजर की है, कुरान पर कैसी नजर थी। कहते हैं हुजूर आए नहीं है, बुलाया गया है। वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊ का, हुजूर कुरान ने कहा है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। तो क्या लिखते हैं? हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान, करीमों के दर की है। या रसूल अल्लाह हम खुद नहीं आए, हमें तो कुरान ने आपका दर दिखाया है। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज करते हैं हुजूर हम सरकार हम गवारों में, तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, जाएं कहां पुकारे किसे किसका मुंह तकें, क्या पुरसिश और जा भी सगे बेहुनर की है, क्या खूबसूरत अंदाज से इल्तिजा करना सिखाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, हुजूर आपके टुकड़ों पे बड़े हुए हैं अब किधर जाएंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत के अशआर सिखाते हैं आका से अर्ज कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करनी है, दीवानगी और वारफ्तगी कैसे होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब जरा सोचें, जो हमें सिखा रहे हैं मदीने कैसे जाना है, खुद मदीने गए होंगे तो क्या कैफियत होगी। जब आप मदीने गए तो दिल में तमन्ना क्या थी कि प्यारे आका अली सलाम का जागती आंखों से दीदार करना, ख्वाब में दीदार कर चुके थे, तमन्ना ये की कि अब जागती आंखों से दीदार करना है। रोजा रसूल पर हाजिर हुए और सारी रात सलातो सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, अर्ज करते रहे। याद रखिएगा आशिकों को आजमाया जाता है, हाँ उनकी तड़प बढ़ाई जाती है। आला हजरत सारी रात तड़पते रहे, जब दीदार नहीं हुआ ना तो आला हजरत ने कलम उठाया और क्या कलाम लिखा, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, लिखते लिखते फिर मकते में वो आजजी की कि लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी खुद इंकसारी करके अर्ज करते हैं हुजूर मेरी क्या औकात, मेरी क्यों सुनी जाएगी। अबे क्या करम हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आला हजरत को सर की आंखों से जागती आंखों से दीदार अता फरमा दिया। ऐसे आशिक रसूल हैं हमें सिखा रहे हैं मोहब्बत कैसे करनी है। ये दुनिया के नजारों के पीछे भागना छोड़ दो है नौजवानों, लंदन पेरिस इधर उधर के ख्वाब ना देखो। आला हजरत कहते हैं ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर था, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह करे दिलो जान कैफियात बस मदीने की तरफ लगी रहे, जिंदगी का मजा भी इसी में। तो बहरहाल आला हजरत के इश्क रसूल का सदका अल्लाह हमें भी आशिक रसूल बनना नसीब फरमाए। आखिरी बात ताकि मैसेज मजीद लेकर जाएं, बातें तो इतनी हैं मैं सारी रात बयान करता रहूं, और आला हजरत की शायरी में तो वो वैरायटी है, और मेरे आसपास ऐसे ऐसे नातखां बैठे हैं इनको और मजीद कितने अशआर याद होंगे। आला हजरत को एक बार बरेली शरीफ के करीब एक रियासत है नानपारा, उसके नवाब के बहुत सारे लोग कसीदे लिखते थे, तो वो नवाब इनाम देता था, कंपटीशन होता था, बड़े लोगों को बड़ा शौक होता है हमारी कोई तारीफ बयान करे। तो आला हजरत के पास कुछ लोग आए कि हुजूर आपके भी इल्मी काम वगैरह थोड़े पैसे की वजह से रुक जाया करते हैं, आप भी कसीदा लिखते हैं, इतनी नाते लिखते हैं, एक नवाब का कसीदा भी लिखते हैं, आपको लिखना तो बड़ा अच्छा आता है, आप फर्स्ट ही आएंगे, बड़ा तोहफा मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आला हजरत ने कलम उठाया
हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि वन ऑफ द बेस्ट कसीदा आने वाला है और ये टॉप पे आ जाएंगे। हाँ, आला हजरत ने लिखा तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा, मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। और वाकई वन ऑफ द मास्टरपीस लिख दिया आपने। क्या लिखा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। यकीन करें, इस हर पूरे कलाम के एक एक शेर पर कई कई देर बात हो सकती है, मगर इसकी मैं खूबसूरती और गहराई सिर्फ एक शेर में बता देता हूं। कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, मेरे आका के हुस्न का कमाल यह है कि नक्श तो छोड़ दो, इमेजिनेशन ऑफ नक्श यानी गुमान नक्श भी नहीं है। दुनिया में हर नेमत के साथ कोई जहमत होती है, फूल लेते हैं तो कांटा आ जाता है, जलाओ तो धुआं निकलता है जो मजा नहीं देता। कभी कोई ऐसी कैंडल मिले जिसमें धुआं ना हो, कभी ऐसा फूल मिले जिसमें कांटा ना हो तो मजा और है। कहते मेरे आका वो फूल है जिसमें कांटा नहीं है, आका वो शमा है जिसमें धुआं नहीं है, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जमा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। लिखते 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 मकतबे कमाल करते हैं, कहते करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा मैं मालदारों की शान बयान करूं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। पहले तो शायरी की खूबसूरती, फिर मैसेज। आला हजरत क्या कहते हैं? मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं आका के दर का फकीर हूं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि पैसे के लिए किसी की मदा करूं, मगर पा रहे ना से क्या किया, रियासत का नाम क्या था, नान पारा, नान पारा के ही टुकड़े कर दिए और कहा मेरा दीन पा रहे ना, यानी रोटी का टुकड़ा नहीं है, इशारा कर दिया कि नान पारा वालों की मदा नहीं करूंगा। और हमें क्या पैगाम दिया? बस ये मैसेज आज मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों लेके चले जाइए कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, मैं आका का गदा हूं, आका का फकीर हूं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, इसके लिए दीन बेच दूं। आज कारोबार के नफे के लिए लोग दीन बेच देते हैं, सौदा कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार, चलेगा, थोड़ा बहुत ही तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो मिलावट करनी, थोड़ी तो गड़बड़ करनी। जब नफा आए सामने, डील आए और पता चले कि ये मना है, तो दिल से आवाज आनी चाहिए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। जब अपने घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई खुशी हो और घर वाले कहें, फैमिली वाले कहें, नाच गाना तो करना पड़ेगा, हैं? ये उल्टे सीधे फंक्शन तो करने पड़ेंगे, क्या करें जनाब, फैमिली को राजी करना है, तो दिल से आवाज आए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। दोस्तों के साथ बैठे, किसी बुराई की तरफ ले जाने लगे, किसी बुरे काम में इन्वॉल्व करें, दिल से आवाज आए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना। कभी अगर ये बात आपके दिल में बैठ गई ना कि आका को नाराज नहीं करना, आला हजरत ने तो फार्मूला दिया है ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आका को राजी कर ले, उन्हीं को उन्हीं की रजा की फिक्र कर ले, तो फिर रब भी राजी हो जाएगा और दीनों दुनिया बेहतर हो जाएगी। तो बहरहाल आला हजरत के इस पैगाम को याद रखिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में हमें ये बातें सिखाई जाती हैं, इस पर अमल कीजिए। रबीउल अव्वल आने वाला है, अपने घरों को सजाइए, परचम लगाइए, मगर अपना आप भी सजाइए। हर किसी की बर्थडे में गिफ्ट देते हो ना, बच्चे के बर्थडे हो तो चॉकलेट देते हैं, टॉयज देते हैं, बड़े की बर्थडे हो तो बुक देते हैं, सूट देते हैं, इत्र देते हैं, प्यारे आका को क्या गिफ्ट दोगे? बर्थडे आ रहा है उनका, क्या पसंद है उनको? जो इलत कुर्रतु आईनी फिस सला, आका फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो आइए ना नियत करते हैं कि बस पांच वक्त नमाज पढ़ के कोई नमाज कजा नहीं होगी, हुजूर का मीलाद बनाएंगे, घर भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं, सुन्नतों पर अमल करके मीलाद बनाएं, फिर देखें इंशाल्लाह नबी पाक। देखिए हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे ना, बादशाह के दरबार में फकीर जाता है, अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है, बादशाह फिर अपनी हैसियत के मुताबिक अता फरमाता है ना। तो आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा दें, फिर देखें नबी पाक कैसी निगाह रहमत फरमाते हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।